गर्जन सहित कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सह गण ललिता श्री विशाखान्विता नमो विष्णुपादाय कृष्ण श्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आचार्य देशकारिणे मुखं करोति वाचा अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारिणं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायके कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज सुबह श्री रामानुजाचार्य की कथा चल रही थी, इस दौरान रामानुजाचार्य की संन्यास ग्रहण करने की बात हुई थी। संन्यास आश्रम स्वीकार करने के बाद उनका नाम हुआ यतीन्द्र या यतिराज। यति मतलब सन्यासी, सन्यासियों में से जो राजा है सर्वश्रेष्ठ सन्यासी। और सन्यास लेने के बाद उन्होंने दो शिष्य स्वीकार किए। सबसे पहले उनकी बड़ी बहन थी, उनके लड़के थे जिनका नाम था दाशरथी, उनको दीक्षा दी। और एक व्यक्ति थे जो बहुत अच्छे सुसंस्कृत कुल ब्राह्मण कुल के थे जिनका नाम था सुरेश, और बड़े अमीर भी थे, वो धनी थे। तो दोनों को उन्होंने दीक्षा दी। आगे चल के रामानुजाचार्य ने ये बतलाया कि कौन किस वातावरण से आता है ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर किसी का जन्म एक ऊंचे कुल में क्यों ना हुआ हो, और ऐसे ऊंचे जन्म का अगर उसे गर्व हो रहा हो तो वो भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो हालांकि दाशरथी एक अच्छे ब्राह्मण घर से थे, उनको अपने विद्वत्ता का और ऊंचे जन्म का थोड़ा गर्व था, जो कि रामानुजाचार्य ने पहचान लिया। तो इसलिए रामानुजाचार्य ने उनको बहुत ही सरल सरल सेवा दी। और जो कुरेश थे, क्योंकि वो बहुत नम्र थे, हालांकि वो धनी व्यक्ति थे, फिर बहुत नम्र होने के कारण रामानुजाचार्य ने कुरेश को भगवद गीता के रहस्य के बारे में उपदेश दिया। तो दाशरथी को काफी समय रुकना पड़ा ये रहस्य समझने के लिए। तो इससे रामानुजाचार्य सिखाना चाहते थे कि भक्ति के पथ में हमें अपने अभिमान को त्यागना चाहिए। भगवान और वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए तरह तरह की सेवा करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए और हृदय से हमें इन सेवाओं को करना चाहिए। जब मध्वाचार्य क्षमा कीजिए रामानुजाचार्य प्रसिद्ध होते गए, जगह जगह उनका नाम फैल गया और उनके पूर्व जो अध्यापक थे यादव प्रकाश, उन्होंने भी उनसे दीक्षा ले ली। वो पहले से ही सन्यासी, अभी सन्यास आश्रम उन्होंने ग्रहण किया और उनका नाम गोविंद दास हुआ। रामानुजाचार्य से काफी बड़े थे उम्र में और ऐसे बड़े हुए उम्र में भी रामानुजाचार्य ने उनको आदेश दिया। अब गुरु शिष्य बन गए और उनको बतलाया कि आप वैष्णव सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके बारे में आप एक ग्रंथ लिखिए। और फिर गोविंद दास उन्होंने ऐसे ग्रंथ लिखा यति धर्म समुच्चया, और आज भी जो श्री संप्रदाय के सन्यासी हैं वो इस ग्रंथ को मानते हैं। और रामानुजाचार्य ने सोचा कि यादव प्रकाश ने वैष्णवों के प्रति और कृष्ण के प्रति इतने अपराध किए हैं आज तक वैष्णव बनने के पहले, तो यह प्रायश्चित करने के लिए एक उपयुक्त मार्ग है। तो वैष्णव का व्यवहार कैसे होना चाहिए, विशेष करके सन्यासी का। तो इस प्रकार गोविंद दास इन्होंने ये ग्रंथ लिखा जो आज भी चल रहा है। फिर हम ये भी चर्चा कर चुके हैं सुबह को कि कैसे उन्होंने अपने भाई गोविंद को भी वैष्णव बना दिया। और इस घटना के बाद रामानुजाचार्य पुनः श्रीरंगम गए, क्योंकि वहां श्रीरंगम में ऐसे एक आचार्य की आवश्यकता थी जो वैष्णव संप्रदाय का नेतृत्व स्वीकार कर सके, जो वैष्णव सिद्धांतों का प्रचार बहुत ही बलवान रूप से कर सके, क्योंकि अद्वैतवाद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, नास्तिक धर्म बहुत फैले हुए थे। तो वह महापूर्ण के साथ रहकर रामानुजाचार्य ने अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और काफी गहराई से उन्होंने अर्चना पद्धति के लिए भी नियम बनाने की चेष्टा की। महापूर्ण ने एक दिन उनसे कहा कि यहां से पास में एक महान श्री वैष्णव रहते हैं जो यमुनाचार्य के शिष्य हैं, जिनका नाम है गोष्ठीपूर्ण, तो उनके पास जाओ और उनसे वैष्णव मंत्र स्वीकार करो। तो रामानुजाचार्य वहां पर गए, परंतु गोष्ठीपूर्ण ने सोचा ये तो अभी नए सन्यासी हैं और इतने आसानी से मैं तो मंत्र नहीं दूंगा, तो उनकी परीक्षा करना चाहते थे। और जब भी रामानुजाचार्य उनके पास जाते तो मना करते, अब नहीं, अगली बार देखेंगे, सोचेंगे। ऐसे 18 बार गए वो, 18 बार उन्होंने मना कर दिया। फिर अंततः उनके गंभीरता को देखकर, उनकी तीव्र इच्छा को देखकर गोष्ठीपूर्ण तैयार हुए और उन्होंने एक मंत्र दिया उनको और कहा कि ये मंत्र का उच्चारण केवल अपने लिए है, किसी और से नहीं करना, ये बहुत ही गोपनीय मंत्र है और जो इस मंत्र का उच्चारण करेगा भव बंधन से मुक्त होकर वैकुंठ जगत को प्राप्त करेगा और उसे भगवान श्री हरि का, श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त होगा और नित्य भगवान की सेवा करने के लिए वो योग्य हो जाएगा। तो रामानुजाचार्य ने इस मंत्र को सुन लिया, ओम नमो नारायणाय, श्री वैष्णव संप्रदाय का ये मंत्र है। जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र को जोड़ देते हैं, तो श्री वैष्णव संप्रदाय में ये ओम नमो नारायणाय ये मंत्र महत्वपूर्ण है। तो रामानुजाचार्य ने सोचा कि अच्छी बात है, ऐसा मंत्र है जिससे सभी लोग वैकुंठ जा सकते हैं, मेरे गुरु ने तो मुझे बताया है कि इसे किसी से नहीं कहना, परंतु अगर इस मंत्र का उच्चारण करके लोग भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं तो इस मंत्र को सभी को बताना चाहिए। तो वहां रामानुजाचार्य तुरंत जाकर कई लोगों को इकट्ठा किया और कहने लगे कि अब मैं एक ऐसा मंत्र आपको देने वाला हूँ जिसका उच्चारण करने से आपको वैकुंठ जगत की प्राप्ति होगी, भव बंधन से आप मुक्त हो जाओगे। तो आप सुनना चाहते हो? तो सभी लोग जोर आवाज हाँ हाँ सुनना चाहते, बताइए बताइए क्या मंत्र है। तो उन्होंने जोर से ओम नमो नारायणाय कहा और ऐसे कई बार उच्चारण करके सभी को उन्होंने इस मंत्र को सुनाया। खबर शीघ्र ही गोष्ठीपूर्ण के कान तक पहुंची। गोष्ठीपूर्ण को बड़ा क्रोध आया और रामानुजाचार्य को बुलाया, कहे किस प्रकार के शिष्य हो तुम? तुम गुरु का दीक्षा लेते ही गुरु के आदेश का पालन आदेश का उल्लंघन कर रहे हो। मैंने तो सख्त कहा था कि ये मंत्र किसी से कहना नहीं, क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसा करने से तुम्हारी क्या गति हो सकती है? तो रामानुजाचार्य ने सर झुकाया, कहा हाँ गुरुदेव मैं जानता हूँ कि मुझे नरक गति प्राप्त होगी। तो फिर इतना सब मालूम होते हुए भी तुमने ऐसे आदेश का उल्लंघन क्यों किया? तो फिर रामानुजाचार्य कहने लगे कि आपने जो मंत्र मुझे दिया था, आपने कहा कि इस मंत्र का उच्चारण करके कोई भी व्यक्ति वैकुंठ जगत को प्राप्त कर सकता है, शाश्वत जीवन वहां भगवान के सानिध्य में प्राप्त कर सकता है, हमेशा के लिए इस दुख भरे जगत से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए मैंने सबको जाके सुनाया ताकि ये सब लोग हमेशा के लिए दुखों से मुक्त हो जाएं और वो लोग जाके अन्यों को सुनाएंगे। इस प्रकार से सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब दुख से मुक्त होकर भगवान की भक्ति को प्राप्त करेंगे। और इसके लिए अगर मुझे अकेले को नरक जाना पड़े तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर मुझे नरक जाने से इन इतने सारे लोगों का उद्धार हो सकता है तो वही सही। तो गोष्ठीपूर्ण ने जब ये सुना तो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने चरण कमल पकड़ लिए रामानुजाचार्य के और कहने लगे कौन गुरु कौन शिष्य मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारे इस प्रचार की भावना को देखकर मैं इतना प्रसन्न हूं कि मैं समझ गया कि वास्तव में वैष्णवता क्या है। तुम अपने ऊपर अन्यों का दुख लेना चाहते हो, तुम नरक जाने के लिए तैयार हो दूसरों के उद्धार के लिए, तो ये वास्तव में वैष्णव की पहचान होती है। वो पर दुख दुखी होते हैं, दूसरों के दुख को सहन नहीं कर पाते, लेकिन दूसरों को सच्चा आनंद देने के लिए अपने आप दुख लेने के लिए तैयार होते हैं। और उसके बाद गोष्ठीपूर्ण ने अपने पुत्र सौम्य नारायण से कहा कि रामानुजाचार्य से दीक्षा ले लो। फिर सौम्य नारायण रामानुजाचार्य के शिष्य हो गए। तो ये घटना बहुत प्रसिद्ध है और इससे उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ी। सब जगह रामानुजाचार्य की बात चल रही थी, जगह जगह से लोग आए, उनमें से कई पंडित भी थे और विद्वान भी थे, सब आए और वो सब वैष्णव बन गए। और कई बार ऐसे होता था कि कोई बड़ा विद्वान आता और चुनौती देता रामानुजाचार्य को, आइए हम तर्क करते हैं, और तर्क में बैठ जाते। जब तर्क में हार जाते तो रामानुजाचार्य के शिष्य बन जाते। तो उस समय ऐसी प्रथा थी कि जब दो विद्वान मिलते थे, अगर वो कोई स्पर्धा में बैठ जाते या कोई ऐसे तर्क में बैठ जाते तो जो भी हार जाता वो दूसरे के शरण को ग्रहण कर लेता था। आजकल इस प्रकार के तर्क नहीं चलते हैं, आजकल केवल बहस चलता है, किसने देखा है भगवान कहाँ है उसे समझाने जाइए, बस वो बहस करते रहेंगे। जितना भी आप कहिए लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते कि हाँ आप जो कह रहे हैं सही है, भले वो कितनी सही बात भी क्यों ना हो फिर भी स्वीकार नहीं करते हैं। परंतु पहले हम देखते हैं कि कितने बड़े विद्वान हो और उनकी कितनी प्रतिष्ठा हुआ करती थी, लेकिन फिर भी अगर वो हार जाते थे तो अपने मान सम्मान के विचार कर न करते हुए वो प्रतिद्वंद्वी के सामने शरणागत हो जाते थे। तो ऐसे कई हुए, इनमें से एक थे जिनका नाम था यज्ञमूर्ति। यज्ञमूर्ति बहुत प्रचंड विद्वान थे और सभी लोग घबराते थे उनसे, क्योंकि जब वो तर्क की चुनौती देते थे तो सब लोग हार जाते थे, परंतु जब रामानुजाचार्य के सामने आए, रामानुजाचार्य ने तुरंत स्वीकार कर लिया। यज्ञमूर्ति ने कहा कि अगर आप जीत जाओगे तो फिर मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके पादुकाओं को मैं पकड़ूंगा और आपका शिष्य बन जाऊंगा। और रामानुज ने कहा कि अगर मैं हार जाऊंगा तो फिर मैं किताबों को पढ़ना छोड़ दूंगा और वैष्णव पंथ को छोड़ दूंगा। ठीक है, चलो फिर तर्क शुरू हो गया। 17 दिन विवाद चलता रहा और 17 दिन के बाद रामानुजाचार्य जब अपने निवास स्थान में अपने आश्रम में लौट के आए तो वो सोच रहे थे, अपने आराध्य देव वरदराज जो कि कांचीपुरम में है उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, अभी 17 दिन हुए, ऐसे तार्किक व्यक्ति के साथ मेरी अभी तक विजय नहीं हो पाई, इतने बड़े तार्किकों को विद्वानों को मैं हरा चुका हूँ आपकी कृपा से और आपकी भक्ति के सिद्धांत को फैलाने में सफल हो रहा हूँ, परंतु ये यज्ञ मूर्ति को मैं परास्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपकी कृपा की आवश्यकता है। तो फिर वरदराज ने उनको स्वप्न में ही उत्साह दिया, प्रेरणा दी और आदेश दिया और कहा कि इस बात में जैसे यमुनाचार्य ने तर्क किया था उसी प्रकार से, उसी ढंग से आगे बढ़ो, उसी दिशा में तर्क को आगे बढ़ाओ और मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी जीत निश्चित है, चिंता नहीं करना। तो जब वरदराज भगवान ने ऐसे आश्वासन दिया रामानुजाचार्य को तो उनका हौसला इतना बढ़ गया कि और जब वो तर्क के स्थान में आए तो उनका शरीर इतना तेजस्वी हो गया था और इतने उत्साही वो लग रहे थे कि जैसे ही एक बार देखा यज्ञ मूर्ति ने रामानुजाचार्य को तर्क किया ही नहीं, तुरंत उनके शरण में आ गए, दंडवत प्रणाम करते कि अभी तर्क आपसे नहीं करना है, जिस प्रकार से आप लग दिख रहे हैं वैसे हमें लग रहा है कि आप तो जीतने ही वाले हैं, तो इसलिए यज्ञ मूर्ति भी वो भक्त हो गए और उनका नाम हो गया देवराज। और रामानुजाचार्य ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया और उस मंदिर की जिम्मेदारी देवराज को दे दी और वो वहां व्यवस्थापन संभालते थे। ऐसे अनेक अनेक थे जिनकी वजह से रामानुजाचार्य की प्रसिद्धि और भी आगे बढ़ने लगी। लेकिन आप जानते हैं कि दुनिया कैसी है, जब कोई व्यक्ति प्रसिद्ध होने लगता है तो कई लोगों को ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है और वो उस व्यक्ति के मार्ग में कांटे बनने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कई लोग थे जिन्होंने सोचा कि ये तो हमारे सिद्धांतों के विरुद्ध ये प्रचार कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इनको यश मिल रहा है तो कुछ करना चाहिए, विष पिलाकर जहर पिलाकर इसको मारना चाहिए। तो उन्होंने एक षड्यंत्र रचाया, जितने श्री रंगम के रंगनाथ जी के पुजारी थे उनमें से कईयों को बुलाया और कहा कि देखो असली सेवक तो आप हो, आप रंगनाथ जी की सेवा कर रहे हो, अपने हाथों से आप ये सेवा कर रहे हो, परंतु प्रसिद्धि यश किसको मिल रहा है, उस रामानुजाचार्य को मिल रहा है और वो तरह तरह की चीजें कह रहा है, आपके प्रति कह रहा है, अन्यों के प्रति भी कह रहा है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी चीजें उनके मन में भर दी और उनका मन बदल दिया और वहां के जो मुख्य पुजारी थे तो उनको भी षड्यंत्र में ले लिया और फिर एक योजना बनाई गई कि चलो रामानुजाचार्य को प्रसाद के लिए बुलाया जाएगा एक जगह और फिर उनके प्रसाद में जहर मिलाया जाएगा। तो जो पुजारी थे, प्रमुख पुजारी, उन्होंने अपनी पत्नी से बात कह दी क्योंकि उनका सहयोग आवश्यक था, वो तो प्रसाद बनाती है, प्रसाद ले आती। तो पत्नी ने सोचा कि बहुत अच्छी बात नहीं है, ये तो बहुत बुरा होगा, रामानुजाचार्य जैसे सन्यासी और ऐसे आचार्य भगवान के शुद्ध भक्त के साथ ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा, बहुत बड़ा अपराध होगा ये। लेकिन क्या करें, बाकी जो पुजारी हैं सब उनको आदेश दे रहे थे, उनके पति भी ऐसे कह रहे थे। तो फिर जब प्रसाद सामने आया तो उस महिला ने बड़े अकलमंदी से एक ऐसा इशारा किया रामानुजाचार्य से जिससे रामानुजाचार्य के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि क्या बात है। और बड़े बुद्धिमान थे रामानुजाचार्य, तो उन्होंने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ी है। तो अपने थाली में से उन्होंने प्रसाद थोड़ा लिया और बाहर एक कुत्ता था, कुत्ते को खिलाया। और जैसे ही उस कुत्ते ने उस प्रसाद को ग्रहण किया तो उसके शरीर में जो परिवर्तन होने लगा उससे रामानुजाचार्य समझ गए कि इसमें कोई विष डाला हुआ है। और भगवान ने इस प्रकार से उनको बचाया। दूसरी बार पुजारियों ने आशा न छोड़ी नहीं और एक प्रयास किया। जो चरणामृत पीने वाले थे तो चरणामृत में भी थोड़ा उन्होंने जहर डाल दिया, लेकिन रामानुजाचार्य ने चरणामृत को बड़े आराम से ग्रहण किया और भगवान की कृपा से उनको कुछ हुआ नहीं। तो रामानुजाचार्य हालांकि अभी अनेकों को शिक्षा दे रहे थे लेकिन वो स्वयं भी शिक्षा पा रहे थे। हम तो सुन चुके हैं कि कांचीपूर्ण से उन्होंने पहले से शुरुआत से ही बहुत शिक्षा प्राप्त की थी, फिर यहाँ महापूर्ण से भी शिक्षा प्राप्त की, उधर गोष्ठीपूर्ण से भी। और दो ऐसे सज्जन थे, भक्त थे, वो भी इन तीनों की तरह यमुनाचार्य के शिष्य थे। उनमें से एक थे मालाधर और दूसरे थे वररंग। तो ये पांच जो है ये रामानुजाचार्य के प्रमुख शिक्षा गुरु हुए। अब रामानुजाचार्य सोचने लगे कि मैंने एक इच्छा तो पूरी कर ली, जो यमुनाचार्य के समाधि ग्रहण करने के बाद मैंने वचन दिया था कि मैं श्री वैष्णव बनूंगा, पंच संस्कारों से मैं होकर मैं इस पथ में आगे चलूंगा, प्रचार करूंगा, वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वेदांत सूत्र के ऊपर श्री भाष्य की रचना नहीं हो पाई है। तो रामानुजाचार्य सोचने लगे कि ऐसे टीका करने हेतु उनको ऐसे बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ना होगा, वैष्णव सिद्धांतों को और भी पढ़ना होगा। तो उन्होंने सोचा कि बोधायन नाम के एक वैष्णव सन्यासी थे जिन्होंने ऐसे बहुत ही गहराई में मायावाद का खंडन किया था और भक्ति के सिद्धांत को स्थापित किया था, लेकिन ये बोधायन वृत्ति जो है कहीं उपलब्ध नहीं हो रही थी। केवल उन्होंने सुना कि कश्मीर में एक दुर्गा के मंदिर में जहाँ एक मायावादी मठ था वहां पे इसकी एक प्रति थी, परंतु वहां जो एक दंडी सन्यासी रहते थे उन्होंने किसी को बताया नहीं कि ये किताब यहाँ पे है, छुपा के रखते थे क्योंकि उनको ये डर था कि ये ग्रंथ अगर कोई पढ़े तो फिर हमारे अद्वैतवाद सिद्धांत का क्या होगा, क्योंकि अद्वैतवाद सिद्धांत का इतने सख्ती से खंडन है इस ग्रंथ में कि ये किसी को हमें दिखाना नहीं चाहिए। फिर भी रामानुजाचार्य ने सोचा कि हमें वहां जाना चाहिए और कम से कम प्रयास करना चाहिए, तो पुरेश को साथ में लेकर गए। अब आपको पता है कि उस जमाने में न हवाई जहाज से न रेलगाड़ी, तो जाना था तो केवल पैदल। तो पैदल चलते 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 अंततः दक्षिण भारत से, मतलब श्रीरंगम से जो कि बहुत दक्षिण भाग में है भारत के, वहां से लेकर कश्मीर तक चलते चलते वो आखिर पहुंच गए। वहां शारदा पीठ इस मठ में वहां गए, वहां सन्यासियों से चर्चा की, उनसे उन्होंने निवेदन किया कि ये बोधायन वृत्ति कृपया मुझे याद दिलाइए, मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, इसकी एक प्रति बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसे कोई ग्रंथ है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं। तो रामानुजाचार्य थोड़े निराश हो गए। रात को अपने निवास स्थान में वो वरदराज से फिर से प्रार्थना कर रहे थे। आखिर में वरदराज तो वरदराज वरदान द मतलब देने में प्रदान करने में सक्षम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो वरदराज ने कृपा की और रामानुजाचार्य के निवास स्थान में वही प्रचारदा पीठ में उनके हाथों में बोधायन वृत्ति दे दी। मतलब वरदराज ने उन मायावादी सन्यासियों के ग्रंथालय से पुस्तक चोरी कर ली और चोरी करके रामानुज के हाथों में सौंप दिया। रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और उठ के वहां से चल पड़े सुरेश के साथ, और चलते 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 बहुत दूर चले गए। उधर शारदा पीठ में सन्यासी ने देखा कि अरे ये बोधायन व्यक्ति गायब हो गया है, हो सकता है वो जो वैष्णव सन्यासी है उन्होंने ही ले लिया होगा। तो उन्होंने थोड़े हट्टे खट्टे लोगों को बुलाया कि जाओ पीछा करो, देखो कहाँ पर है वो, कहाँ गए हैं। तो ये सारे लोग जगह जगह फैल गए रामानुजाचार्य को ढूंढने के लिए। एक महीने बाद वो मिले उनको कहीं एक आश्रम में। वो चलते चलते जहाँ रुके हुए थे तो वहां से उन्होंने ग्रंथ वापस ले लिया। रामानुजाचार्य को बड़ा दुख हुआ, लेकिन जब ये लोग सब चले गए थे तो उनके शिष्य कुरेश ने कहा कि गुरुदेव आप बिल्कुल चिंता नहीं करना। अब कुरेश सद्गुणों से संपन्न तो थे ही, लेकिन उनके अंदर और एक विशेष गुण था, और वो ये था कि वो श्रुतिधर थे। एक बार कोई भी वस्तु पढ़ते थे या सुनते थे उसको याद रख सकते थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने पिछले एक महीने में जब से हम लोग शारदा पीठ से निकले हैं मैं रोज रात को ये बोधायन वृत्ति पढ़ता था, और सारी बोधायन वृत्ति को मैंने पढ़ ली और मैंने कंठस्थ कर लिया, अब मैं इसको लिखूंगा। तो फिर 5-6 दिनों में कुरेश ने सारी जो सारा ग्रंथ है उसे 5-6 दिन लगातार लिखते 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 सारा ग्रंथ तैयार कर दिया, जैसे है वैसे यथारूप। और ये कथा जो है केवल समझिए 1000 वर्ष पूर्व की बात होगी। तो 1000 वर्ष पूर्व भी लोगों की ऐसी छोटी शक्ति और ऐसी तेज बुद्धि होती थी, क्योंकि वो ऐसे शुद्ध वातावरण में रहते थे, उनकी उनके मन उनकी इंद्रियां इतनी शुद्ध होती थी। तो रामानुजाचार्य बड़े प्रसन्न हुए और इस ग्रंथ को लेकर फिर यहाँ पर आए वापस श्री रंगम में, और उसके बाद उन्होंने श्री भाष्य की रचना की, और वहां बैठकर फिर वैष्णव ऋषि पराशर इनके ग्रंथों का भी प्रचार करने लगे, और एक शब्दकोश आदि बनाने की इच्छा थी उनको, जो उनका उनका तीसरा वचन था वो भी वो पूरा करने लगे। उधर ऐसे हुआ कि जैसे अनेक लोग वैष्णव पंथ को स्वीकार करने लगे तो चोल राज के जो राजा हैं वो थोड़े चिंतित हो गए। ये वही राजा हैं जिनकी पुत्री को के ऊपर भूत सवार हो गया था, और रामानुजाचार्य जाकर भूत को हटा दिया था। तो इस राजा ने देखा कि सब जगह ये वैष्णव सिद्धांत बहुत फैल रहे हैं, और ये राजा शिव जी के पक्का उपासक थे, कट्टर उपासक थे शिव जी के, शैव थे वो। तो उन्होंने एक आदेश दिया कि मेरे राज्य में हर एक व्यक्ति को स्वीकार करना चाहिए कि शिव जी ही परम है, और विशेष करके जो विद्वान थे और अनेक मठ थे और खास करके जो वैष्णव थे उनके पास उन्होंने ये राज हुक्मनामा भेजा कि ये सभी को यहाँ दस्तखत करना चाहिए कि शिव जी ही परम है, शिव जी से श्रेष्ठ कोई नहीं है। तो अनेकों ने डर के मारे वहां साइन कर दिया, लेकिन जब रामानुजाचार्य के पास सैनिक आए तो उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान विष्णु या कृष्ण ही परम हैं। तो सैनिक वापस गए तो राजा ने कहा कि गिरफ्तार करके ले आओ रामानुजाचार्य को। तो रामानुजाचार्य को खबर पहुंची कि ये सब गिरफ्तार करने आ रहे हैं मुझे और शायद मृत्यु दंड देंगे, तो जल्दी से वो वहां से निकल पड़े। तो कुरेश ने कहा गुरुदेव आप ऐसे कीजिए, मैं गृहस्थ हूँ और आप सन्यासी हैं, आप मेरे वस्त्र ले लीजिए, मैं आपका वस्त्र ले लेता हूँ आपके वस्त्र, और मैं राजा के दरबार में जाता हूँ और मैं कहूंगा कि मैं रामानुज हूँ, जो भी दंड मिलेगा वो मुझे मिलेगा, मेरे जीवन की क्या कीमत है, अभी आज समाज में आपकी बहुत आवश्यकता है, यहाँ इतना अज्ञान है, नास्तिकवाद है, दुख है, तो आप जैसे आचार्यों की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर, तो आप यहाँ से निकल जाइए। तो थोड़े भक्तों के साथ रामानुजाचार्य वहां से सफेद कपड़े पहन के पीछे दरवाजे से निकल गए और दूर गए। आज जो मैसूर शहर है उसके पास में एक स्थान है मेलकोटे, और उस स्थान के पास वहां पर गए। उधर सैनिक चले आए आश्रम में और उन्होंने कुरेश को गिरफ्तार किया, ये समझकर कि ये रामानुजाचार्य हैं, कि सन्यास वेश धारण करके बैठे थे। तो फिर जब कुरेश आए राजा के दरबार में, राजा ने कहा कि तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि शिव जी परम है? अगर स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। तो कुरेश ने कहा कि जो सत्य है उसी को मैं स्वीकार करूंगा, आप जो दंड देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। अब राजा सोच रहे थे कि ये रामानुजाचार्य हैं, और उन्होंने सोचा कि जब मेरी पुत्री छोटी थी तो रामानुजाचार्य ने सेवा की थी मेरी पुत्री के लिए, इसलिए मृत्यु दंड नहीं दूंगा इसे, लेकिन ये मैं ऐसा दंड दूंगा जिससे सभी को ये संदेश मिल जाएगा कि उन्हें शिवजी को मारना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने सैनिकों से आदेश दिया कि इनकी आंखें निकाल दो, क्योंकि ये देख नहीं पा रहे हैं कि शिवजी परम है, तो आंखें निकाल दो। और फिर वहां कुरेश की आंखों को निकाल दो, उखाड़ दो। तुम सोच सकते हैं कि कुरेश ने कितना बड़ा त्याग किया, कोई आसान बात है? केवल अंधा कर दिया गया उनको। और बाद में कुरेश की दृष्टि वापस आ गई भगवान की कृपा से। एक और सुंदर कहानी है, लेकिन आगे रामानुजाचार्य ने जब संगनाथ जी से प्रार्थना की, वरदराज जी से प्रार्थना की, तब उन्होंने दृष्टि फिर से कुरेश को दिला दी। लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा त्याग कुरेश ने तो किया, और इस प्रकार से वापस चले आए। उधर रामानुजाचार्य आगे चले और अनेक जैन धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों को उन्होंने प्रचार किया, उनके साथ तर्क करते, वाद करते, और फिर उनको हरा कर उनको वैष्णव बना देते। एक बार ऐसे हुआ कि 1000 जैनी लोगों की सभा थी, ऐसे सभा में रामानुजाचार्य ने उनको इतनी इस तरह से हरा दिया कि जैनी लोगों को स्वीकार करना ही पड़ा कि वैष्णव सिद्धांत श्रेष्ठ है, परंतु वो मान नहीं पाए, वैष्णव धर्म को स्वीकार नहीं कर पाए, इसलिए उन 1000 जैनी लोगों ने आत्महत्या कर ली कि हम आत्महत्या कर लेंगे लेकिन इस वैष्णव सिद्धांत को हम मानेंगे नहीं, हम वैष्णव नहीं बनेंगे। उधर जिस राजा ने, चोल राज्य के राजा ने कुरेश के को अंधा बना दिया था, कुरेश को अपनी आंखें तो मिल गई, लेकिन उस राजा को एक ऐसी बीमारी हो गई, थोड़ी कीड़ों की वजह से उनके कंठ में कुछ बहुत बड़ी बीमारी हो गई, और जिसकी वजह से उनको थोड़े ही दिनों में मर जाना पड़ा, इसलिए उनका नाम पड़ा कृमि कंठ, जिसमें कंठ में कृमि या कोई कीटाणु वगैरह है। तो जो वैष्णव के साथ ऐसे व्यवहार करते हैं उनके लिए उनका नाश तो निश्चित ही है। तो फिर आगे रामानुजाचार्य वहां के राजा, जैन राजा के पास गए, और वहां भी ऐसी ही घटना हुई कि उस जैन राजा के पुत्री के ऊपर भी भूत सवार हो गया था। और ये भी कहानी लंबी है, और जब रामानुजाचार्य वहां पर गए तो उन्होंने भूत को निकाल दिया, और फिर भूत निकल गया, और सभी ने पूछा, लेकिन भूत ने कहा कि जब तक मैं आपके चरणों का स्पर्श नहीं करूंगा और आपका चरणामृत नहीं पीऊंगा तब तक मैं नहीं जाऊंगा। तो रामानुजाचार्य ने उस कन्या के स्तर के ऊपर अपने चरण कमल रखे और वो चरणामृत पान किया उस लड़की ने, राजकुमारी ने, और फिर वो भूत वहां से निकल गया। तो रामानुजाचार्य ने उस भूत से पूछा कि क्या सबूत है कि तुम यहाँ से इस शरीर से निकल गए हो? तो फिर भूत ने कहा कि दूर देखो वहां वृक्ष है, और जब सभी ने उस वृक्ष की ओर देखा तो वृक्ष का एक शाखा जो है वो गिर पड़ा नीचे, टूट के गिर पड़ा, वहां कोई था नहीं, दिखने के लिए तो कोई था नहीं। तो फिर सबने समझ लिया कि भूत निकल गया और उसने वो शाखा तोड़ दिया। तो वो जैन राजा जो है वो इतने प्रभावित हुए रामानुजाचार्य के प्रचार से, उनकी शुद्धता से, उनकी भक्ति से कि वो भी वैष्णव बन गए और दीक्षा उन्होंने स्वीकार किया और उनका नाम हुआ विष्णुवर्धन। और सारे इलाके में उनकी वजह से प्रचार वैष्णव धर्म का बहुत फैल गया। उस इलाके में रामानुजाचार्य करीब करीब लंबे समय तक रहे थे, 4 से 12 साल भी हो सकते हैं, 12 साल वहां पर रहे और वहां कई मंदिर भी बनाए। और वहां वैकुंठ के पास एक पर्वत है, वहां योग नरसिंह मंदिर है और वहां जल नारायण मंदिर भी है, वैकुंठ के बहुत प्रसिद्ध मंदिर है ये सब। और इनकी उन्होंने स्थापना की और वहां पर पूजा अर्चना जो है कुछ आज भी बड़े अच्छे ढंग से चल रही है। तो इस प्रकार से रामानुजाचार्य प्रचार करते रहे। पुनः फिर वो त्रिमिकंठ के मृत्यु के बाद वापस श्रीरंगम लौट आए। वहां पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पद्धति बनाई पूजा अर्चना के लिए। रामानुजाचार्य सभी के ऊपर कृपा करते थे, उनके सैकड़ों शिष्य थे, ब्रह्मचारी, सन्यासी, गृहस्थ, अनेक शिष्य हुए उनके। तो गृहस्थों के ऊपर भी वो कृपा करते रहे। तो अभी 10 मिनट हैं, तो 10 मिनट में मैं उनके शिष्य की कथा बताना चाहता हूँ, जिनका नाम है धनुदास और इनके बारे में 2 लीलाएं हैं। तो धनुदास वैसे शूद्र परिवार के थे और मल्ल योद्धा थे, पहलवान कुश्ती करते थे। तो एक बार जब रामानुजाचार्य कहीं गए थे तो उन्होंने देखा कि ये व्यक्ति अपने पत्नी के साथ जा रहा है, वैसे उस समय पत्नी भी नहीं थे शायद, धनुर्दास, और वो एक छाता जो है इस महिला के सर के ऊपर लेके जा रहे थे। वो पत्नी आगे जा रही है और इनके पीछे पीछे ऐसे छाता लेकर जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि कौन देख रहा है, कौन कोई कह रहा है, कोई हंस रहा है, कोई टीका कर रहा है। अच्छा नहीं लग रहा था कि ये बहुत सुंदर महिला आगे चल रही है और ये पीछे पीछे उसके छाता लेके जा रहे हैं। तो रामानुजाचार्य ने देखा, उनको करुणा हुई कि ये व्यक्ति इतना आसक्त हो गया है कि उसे पता भी नहीं चल रहा है कि ऐसा सबके सामने करने से लोग इसका कितना मजाक उड़ा रहे हैं, फिर भी ये किए जा रहा है। तो फिर उसने धनुर्दास को बुलाया और कहा कि उन्हें पूछा ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये धनुर्दास है, बुलाओ। तो धनुर्दास को बुलाकर उन्होंने कहा कि अरे धनुर्दास, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, क्या तुम नहीं जानते कि लोग इतनी निंदा कर रहे हैं तुम्हारी। तो धनुर्दास ने कहा, लेकिन क्या करूं, ये जो मेरी पत्नी है ये तो सबसे सुंदर है। तो उन्होंने कहा, विशेष करके उनकी आंखें इतनी सुंदर है कि इन्होंने मुझे पूरी तरह से गुलाम बना दिया है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता और ऐसा सौंदर्य तो दुनिया में कहीं नहीं है। तो रामानुजाचार्य ने कहा, नहीं ऐसा तो नहीं है, तुम और कोई सुंदर आंखें देखना चाहते हो। हाँ ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ है, मैं दिखाता हूँ, आओ मेरे साथ। तो उनको ले गए वो रंगनाथ जी के मंदिर में और जैसे ही उसी समय दर्शन खुला और पुजारी जो है फिर वो दीप अर्पण कर रहे थे रंगनाथ जी के मुखारविंद में। और फिर रामानुजाचार्य ने धनुर्दास से कहा, देखो इन आंखों को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे रामानुजाचार्य की तीव्र इच्छा से और उनकी कृपा से धनुर्दास का हृदय परिवर्तित हो गया और वास्तव में समझ गए कि दुनिया के सौंदर्य, इस दुनिया के आकर्षण का कोई मतलब नहीं है, ये सब झूठा है, सत्य तो केवल भगवान का सौंदर्य है। तो वो भी बहुत ही पक्के भक्त बन गए, उनकी पत्नी भी भक्त बन गई। ये आश्चर्य की घटना है, लेकिन ऐतिहासिक घटना है, सही है। ऐसा परिवर्तन अनेकों का किया रामानुजाचार्य ने, इसलिए तो वो संप्रदाय आचार्य कहलाते हैं, कोई साधारण सन्यासी नहीं थे वो। हालांकि कोई सन्यासी भी साधारण नहीं है, लेकिन सन्यासियों में से भी कि यदि राज के अंदर है भगवान ने विशेष शक्ति उनको प्रदान की थी वैष्णव धर्म का प्रचार करने के लिए, तो ये धनुर्धर आगे चल के एक ऐसे आदर्श गृहस्थ भक्त हुए कि रामानुजाचार्य ने उनके उदाहरण से, उनके जीवनी से, उनके ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्यों को उपदेश करना चाहा, उपदेश देना चाहा। जब उन्होंने देखा कि उनके शिष्य थोड़ा कुछ शिकायत कर रहे थे धनुर्धर के बारे में और आपस में थोड़ी बहुत झगड़े हो रहे थे, तो उन्होंने अपने ब्रह्मचारी और सन्यासी शिष्यों को बुलाया और कहा कि देखो ऐसे करो, मैं धनुर्धर को किसी बहाने मंदिर बुला लेता हूँ और वो नहीं जाएगा, वो बहुत देर से अपने घर में जाएगा, उसकी पत्नी जो है वो अकेली घर में होगी, वो सो रही होगी, तो वह उस समय जाना और उसके घर में उसके जो गहने हैं वो चुरा कर ले आना। तो रामानुजाचार्य अपने एक दो शिष्यों को साथ में लेकर गए, ज्यादा भी हो सकते हैं पता नहीं कितने थे, तो ले गए और कहा कि देखो यहाँ खिड़की खुली है, चलो अंदर जाओ यहाँ से और देखो और फिर वहां चोरी करो। रामानुजाचार्य बाहर खड़े रहे खिड़की के बाहर, उधर वो शिष्य वहां पर चले गए अंदर और उनकी धनुर्धर की जो पत्नी है वो एक करवट बदल के एक साइड में सोई हुई थी, तो उनका दाहिना जो भाग है वो ऊपर था, तो उनके दाहिने शरीर के दाहिने भाग से जो भी गहने थे कान में हाथ में आदि वो निकालने लगे। तो उनकी पत्नी को तो पता चला कि ये तो सन्यासी है और आ रहे मेरे गहने चुरा रहे हैं, ये क्या गरम बना है, क्या है ये, क्या हो रहा है, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन नहीं, अभी मुझे कुछ करना नहीं चाहिए, अगर मैं जान जाऊंगी ऐसे आप खोलेंगी तो डर जाएंगे, तो मुझे उन्होंने दे दिया, आसानी से अपने गहने दे दिए। लेकिन वो सोच रही थी कि बाएं ओर के गहने रह गए हैं तो मैं करवट बदल दूंगी तो बाएं ओर के भी वो गहने ले जाएंगे, हाथ में चूड़ी वगैरह है या कान में है वो ले जाएंगे। तो जब जैसे घूमी वो भक्त घबरा गए, यार ये तो जाग गए और जल्दी से भाग गए, खिड़की के बाहर निकल गए। तो रामानुजाचार्य ने कहा ठहरो थोड़ी देर यहीं पे, अब इंतजार करते हैं, जब धनुर्धर जब घर लौट के आएगा तब देखते हैं कि पति पत्नी के बीच में क्या संवाद होता है। तो फिर थोड़ी देर बाद धनुर्धर चले आए घर में और पत्नी सो रही थी, लेकिन क्या तो उन्हें पूछा कि अरे ये क्या है, केवल एक तरफ सब ये है गहन, दूसरी तरफ नहीं, ये क्या है ये? तो उन्हें बताया कि देखो मैं समझ रही हूँ कि हमारे आश्रम में, हमारे गुरुदेव के आश्रम में बहुत बड़ी समस्या चल रही होगी, उनको बहुत आर्थिक कष्ट हो रहा होगा। क्यों, क्या बात है? हाँ मैं सो रही थी और हमारे मठ के एक सन्यासी ब्रह्मचारी हैं वो अंदर आए और उन्होंने मेरे गहने ले लिए। और अच्छा, तो वाकई बहुत ही कष्ट हुआ हो रहा होगा मठ में कि वो लोग ऐसा कर रहे हैं। तो हाँ, तो फिर तुमने क्या किया? हाँ तो एक तरफ ले लिए और जैसे मैं करवट बदलने लगी ताकि वो दूसरे तरफ के गहने ले लें, वो घबरा गए भाग गए। अरे अरे क्या किया तुमने, देखो अगर थोड़े सावधानी से किया होता तो कम से कम वो दूसरे तरफ के गहने भी तो ले जा सकते। अब तुमने कितनी मूर्खता की, देखो इसकी वजह से वो थोड़े गहने नहीं ले पाए। तो जब रामानुजाचार्य ने बात सुनी, दूसरों को सुनते बताया कि सुनो ये क्या बोल रहे हैं, कैसे इनकी भावना है, उधर उन्होंने इन ब्रह्मचारियों को सन्यासियों को बताया था कि हमारे आश्रम में जाओ और आश्रम में जाकर सारे जो भक्त हैं उनके कॉफिन इधर उधर कर दो, बदल दो, इसकी जगह वे जहाँ कपड़े सुखाते हैं वहाँ उनके कपड़े लेकर यहाँ रखो, वहाँ रखो, सब यहाँ पे बदल दो। जब सुबह सब जागे, देखने लगे कि अरे मेरा कॉफिन नहीं, मेरे कुर्तन इस दूसरे का कॉफिन, अरे ये क्या है, तो आपस में बहुत झगड़े होने लगे, वाद विवाद होने लगा कि ये क्या है, तुमने मेरे कॉफिन क्यों लिया, तुमने मेरे धोती क्यों ली, और आपस में झगड़ा करने लगे। तो रामानुजाचार्य ने कहा कि देखो वहाँ यहाँ पर ये वैरागी हैं, लेकिन वैरागी होने के बाद भी अपने कॉफिन से और धोती से इतने आसक्त हैं कि आपस में झगड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ देखो वो गृहस्थ हैं, लेकिन फिर भी उनकी प्यार की भावना, उनकी शरणागति की भावना, भक्ति की भावना देखो। तो फिर जो ब्रह्मचारी सन्यासी थे वो बहुत शर्मिंदा हो गए, तो उन्होंने सोचा हाँ वास्तव में हमारे गुरु महाराज ने बहुत अच्छा सबक हम सबको सिखाया है कि वास्तव में वैष्णव का क्या होता है, फिर वो सीख गए। इस प्रकार से रामानुजाचार्य ने अनेक ब्रह्मचारियों को, गृहस्थों को, सन्यासियों को मार्गदर्शन किया, रोज कथा किया करते थे, प्रवचन दिया करते थे और काफी भ्रमण भी करते थे, जगह जगह जाकर बड़े जोरदार प्रचार करते थे। एक बार जब वो तिरुपति पहुंचे थे तो वहां बहुत बड़ा वाद चल रहा था, कई लोग ऐसे थे जो जिनका मुद्दा ये था कि बालाजी जो है जो तिरुमला में है तिरुपति, ये शिव जी है, और कई कह रहे थे ये तो विष्णु है, आप कैसे कह सकते हो ये वेंकटेश्वर तो विष्णु है। तो दोनों के बीच में काफी वाद हो रहा था। तो उधर रामानुजाचार्य आए और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ये वास्तव में विष्णु भगवान है, ये शिव जी नहीं है। तो खैर ऐसे अनेक लीलाएं रामानुजाचार्य के बारे में है, न केवल उन्होंने श्री भाष्य की रचना की, वेदांत संग्रह इत्यादि ऐसे कई ग्रंथों को भी उन्होंने लिखा, उनके बारे में ज्यादा जानकारी ग्रंथ पाई जाती है जिसका नाम है प्रपन्नामृत, जो उनके शिष्य अनंताचार्य ने लिखी है। तो इस प्रपन्नामृत के आधार पर जो भी आजकल जानकारी है रामानुजाचार्य के बारे में वो उपलब्ध है। तो 5 बज गए हैं, तो श्रील रामानुजाचार्य की जय, श्रील रामानुजाचार्य तिरुभाव दिवस की जय, गौ प्रेमानंदे। और एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि तिरुभाव दिवस है, कि रामानुजाचार्य के प्रकट अवस्था में भी उनके शिष्य ने उनसे निवेदन किया कि हम आपकी मूर्ति की स्थापना यहाँ करना चाहते हैं। तो रामानुजाचार्य ने अनुमति दे दी और उनके अष्टधातु की मूर्ति बनाई गई और रामानुजाचार्य ने उस मूर्ति को आलिंगन करके अपनी दिव्य शक्ति उस मूर्ति में प्रदान कर दी। तो इसलिए समझा जाता है कि ये मूर्ति वास्तव में रामानुजाचार्य से अभिन्न है। और साथ साथ ऐसे भी बताया जाता है कि रामानुजाचार्य का जो दिव्य शरीर है वो श्रीरंगम के मठ में, मंदिर में ही एक जगह है, जो इजिप्त आदि देशों में राजाओं के शरीर को वैसे केमिकल आदि से कुछ वो रखते थे सुरक्षित, और इतने बड़े बड़े वो इतने विख्यात हो जाते हैं, प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन यहाँ रामानुजाचार्य के शरीर तो है लेकिन इसके बारे में कोई ज्यादा लोग जानते नहीं है। तो रामानुजाचार्य इसी दिवस पर स्वधाम लौट के, भगवान के धाम वैकुंठ जगत लौट के चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुरेश की आंखें कैसे आई, वास्तव में जब कुरेश के बारे में रामानुजाचार्य को ज्ञान हुआ तो रामानुजाचार्य को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना सब किया, अपनी आंखें खो दी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो तुम जाओ वरदराज के सामने जाओ और मांगो कि वो दृष्टि दें तुम्हें। लेकिन कुरेश नहीं मांग सकते थे कि मैं मेरे लिए क्यों मांगू, ये तो मेरे शरीर के लिए भगवान से कुछ सेवा के लिए मांगना चाहिए, मैं मेरे आंखें क्यों मांगू। लेकिन अंततः रामानुज चार नहीं प्रार्थना की वरदराज से, और फिर वरदराज की कृपा से कुरेश को दृष्टि वापस मिल गई। ये संक्षेप में ठीक है, अभी भगवत गीता क्लास भी वहां शुरू हो रहा है, इसलिए यह कथा को आगे रखना सीखना ठीक है। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
पानी मिलेगा?
हाँ
पानी है।
हाँ हाँ।